तारीख 19 दिसंबर दिन शनिवार, बीबीसी इंडिया बोल, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। विवादों में है दिल्ली क्रिकेट संघ। पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के समय में डीडीसीए निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी सीधे मोदी सरकार पर हमले कर रही है। ललित मोदी भारत में न रहते हुए भी राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं। कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई से श्रीनिवासन का राज खत्म हुआ। क्रिकेट संघ क्यों बने हैं राजनीति के दलदल, और इस दलदल में उतरने के लिए क्यों बेताब रहते हैं नेता? आज बीबीसी इंडिया बोल का यही है बहस का विषय। राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001। लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और पहले सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। नेशनल हेरल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बिना शर्त जमानत दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अदालत ने दोनों को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जमानत के बाद सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों को निशाना बना रही है, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं और अपनी लड़ाई जारी रखेगी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक कार में हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मक्का अल मुकर्मा की व्यस्त सड़क पर कुछ बंदूकधारी आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने बम विस्फोट किया। तत्काल तो ये पता नहीं चल पाया है कि इस बमबारी में किसका हाथ था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में चरमपंथी गुट अलशबाब ने इसी इलाके पर कई हमले किए हैं। कुर्द लड़ाकुओं के खिलाफ तुर्की के दक्षिण पूर्व में एक बड़े सैन्य अभियान का ब्यौरा अब तुर्की की सरकार जारी कर रही है। सरकार का कहना है कि इस बुधवार से शुरू हुए इस अभियान में अब तक कुर्द समर्थक पार्टी पीकेके के 70 संदिग्ध सदस्य मारे गए हैं और 2 सैनिकों की भी इसमें मौत हुई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस सैन्य अभियान में 10,000 सुरक्षा बल और पुलिस के जवान भेजे गए हैं, जिनके साथ टैंक भी हैं। जुलाई में पीकेके के साथ शांतिवार्ता टूट जाने के बाद ये सरकार का पहला प्रमुख सैन्य ऑपरेशन है। रूस और अमेरिका की सरकार ने सीरिया में अगले 6 महीनों में एकीकृत सरकार स्थापित करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। हालांकि राष्ट्रपति असद की भूमिका पर दोनों देशों में अब भी मतभेद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया पर सर्वसम्मति से जिस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, उसमें रूस और अमरीका की ये प्रतिबद्धता भी शामिल है। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो इस प्रस्ताव को बहुत अहम नहीं मानते। आज हमने जो हासिल किया है उसके लिए मैं बहुत आशावादी नहीं हूं, लेकिन सीरिया से जो उम्मीद की जा रही है उसके लिए अनुकूल बाहरी परिस्थितियों को बनाने की तरफ ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम उन मुद्दों पर सहमति बना पाए जो इस देश के भविष्य को निर्धारित करेंगे। ये थे सर्गेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के एक हवाई हमले में गलती से इराकी सेना के 9 जवान मारे गए हैं। गठबंधन सेना ने पहले यह कहा था कि फल्लुजा शहर के पास लड़ाई के दौरान एक दोस्ताना गोलीबारी की घटना हुई है। गठबंधन सेना का कहना है कि वह इराकी सेना के अनुरोध पर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ उनकी लड़ाई में हवाई हमलों के जरिए उनकी मदद कर रही थी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति ग्वेन ह्ये के श्रम कानूनों के सुधार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में ये ताजा प्रदर्शन था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल,
बीबीसी इंडिया बोल।
जी, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नेशनल हेरल्ड मामले में जमानत के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। सोनिया गांधी का कहना था कि हम डरने वाले नहीं हैं। आज अदालत में क्या हुआ, अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन आज जो बीबीसी इंडिया बोल का विषय है वो ये है कि भाई खेल संघ राजनीति के अड्डे क्यों बन गए हैं, और अगर ये अड्डे हैं तो इसमें हर नेता इस दलदल में क्यों आना चाहता है। नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन और साथ में आदेश कुमार गुप्त जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये DDCA का जो मामला है चल क्या रहा है?
देखिए, ये वही चल रहा है जो हमने पीछे कई सालों से देखा है। बोर्ड में श्रीनिवासन जी की जो हटना पड़ा उनको सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से, और DDCA में तो ये जो एलिगेशंस अब सामने आए हैं जो पब्लिक को पता लग रहे हैं, ये पिछले 15-20-30-40 साल से ऐसा ही चल रहा है जब से DDCA बनी है। तो ये यही दर्शाता है कि क्रिकेट की जो करप्शन है वो इतनी गहरी है, इतनी मजबूत जड़ें हैं कि उसकी सफाई करना मुझे लगता है कि कहीं DDCA में भी सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन ना करना पड़े सफाई करने के लिए।
नहीं, क्योंकि अगर आप मैचेस खेलने के मैदान के लेने की बात करें तो मैदान की अनुमति नहीं मिलती है और इस तरह के तमाम प्रकरण आते हैं।
देखिए, अनुमति नहीं मिलती क्योंकि कंप्लाइशन सर्टिफिकेट्स ही नहीं। आपने एक इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया है लेकिन उसमें फायर सेफ्टी का क्लियरेंस नहीं है, उसमें बिल्डिंग क्लियरेंसेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पदाधिकारी हैं, जो उसको चलाते हैं, वो एक ये तो क्रिमिनल नेगलिजेंस है। कल को कोई अगर हादसा होता है, आप करप्शन एक दूसरा मामला है, कल को कोई हादसा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
तो बहुत सारे पचड़े हैं। सवाल ये है कि देखिए, चाहे आप अनुराग ठाकुर का नाम लें, राजीव शुक्ला का नाम लें, फारूक अब्दुल्ला का नाम लें, शरद पवार का नाम लें, सब बड़े नामी गिरामी लोग हैं और क्रिकेट संघों की राजनीति में कब्जा इन्हीं का है और इनका किसी का भी कोई खेल से लेना देना नहीं है, तो ये जो राजनीति है इनको क्यों लुभाती है?
देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी आज से साल पहले मुझे नहीं लगता कोई उनको जानता है। आज की तारीख
उनकी पहचान ये थी कि भाई आप ठाकुर साहब, सीपी ठाकुर के आप बेटे हैं,
आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर के लड़के हैं। आज की तारीख में अनुराग ठाकुर को मेरे ख्याल से कई बड़े बड़े BJP के नेता होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, उनका नाम कोई नहीं जानता, अनुराग ठाकुर का नाम जानता है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट इतनी पॉपुलर स्पोर्ट है और इसका जो चलाता है, जो सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वो हर रोज़ TV के सामने होता है। आज भी आप देखिए, इंडिया की सिलेक्शन हुई है तो अनुराग ठाकुर जी लाइव TV पे चले होंगे, तो इसका क्लाउड दी। एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? एक विजिबिलिटी चाहिए, क्लाउड चाहिए, और क्रिकेट से ज़्यादा बड़ा
और
कोई देता नहीं है।
वो
उनको क्रिकेट से मिल रही है,
मतलब नाम भी मिल रहा है और दाम भी मिल रहा है।
और अब ये भी पता चलता है धीरे धीरे कि वहाँ पे पैसे भी इतने साथ में जुड़े हुए हैं, क्लाउड भी है, पैसे भी हैं, तो फिर क्यों नहीं पॉलिटिशियन बन जाए।
जी, एक कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल करते हैं। बंधु, नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं? हेलो
हेलो, मैं मोहन मुरारी मिश्रा, घाट मतला, सदस्य मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ।
हाँ मुरारी लाल जी, अपनी राय रखिए आप।
मैं लगना चाहता हूँ आप जो मुद्दा रखे हैं उस मुद्दा को मैं खंडन करना चाहता हूँ, जो कि क्रिकेट में भी राजनीति घुस चुका है। मेरे दृष्टिकोण से जो क्रिकेट हर क्षेत्र में राजनीति घुस चुका है, इस चीज में संन्यास में भी राजनीति घुस चुका है,
हर चीज में मुरारी लाल जी कह रहे हैं कि हर चीज में राजनीति घुसा हुआ है,
राजनीति घुस चुका है। जी सर
जी।
और मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, जो ललित मोदी वाला या DDCA का जो मसला है, मैं जो न्यायालय किसी व्यक्ति को या किसी चीज को जब तक दोष सिद्ध नहीं कर देता है वो देश न्याय की दृष्टिकोण से दोषी नहीं होता है। ललित मोदी का जो प्रकरण है, जो अध्यक्ष चुना गया है
जी,
उसको सुनकर के भेज गया, जो विपक्षी भी था
जी,
वो भी अपना पापाओं पीछे कर लिया।
जी 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 जी। मुरारी लाल जी, आपकी आपकी जो आवाज़ है वो बार बार टूट रही है और टेलीफोन पर आवाज़ साफ नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हर चीज़ में जब राजनीति घुसी है तो भाई खेल में क्यों नहीं घुसेगी? आदेश
जी, देखिए ये तो बात सच है और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, चाहे हॉकी हो, इवन अगर फुटबॉल की बात की जाए तो प्रफुल्ल पटेल उसके अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि खेल संघों को पैसे की ज़रूरत होती है और जितने भी बड़े बड़े जो प्रायोजक होते हैं, ऐसा माना जाता है कि नेताओं के माध्यम से वो आ जाते हैं, शायद ये बड़ी वजह। और प्रदीप जी तो कह ही चुके हैं कि जब नाम और
नेता प्रायोजक लाने में मदद करते हैं क्या?
देखिए, बाकी स्पोर्ट्स में मैं मान सकता हूँ जहाँ के पैसा है नहीं और उनको इन्फ्लुएंस चाहिए, कोई ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए जो बिजनेस हाउसेज को या PSU से ऐड दिलाए, लेकिन क्रिकेट में इतना बेशुमार पैसा है वहाँ पे, मतलब आपको कोई कुछ करना नहीं है, पॉपुलैरिटी स्पोर्ट की इतनी है, टेलीविजन राइट्स इतने हैं, तो उसमें
अपने आप बरसे
इन, ये खुद जाना चाहते हैं क्योंकि इनको यहाँ दिख रहा है, यहाँ उनको कोई बुला नहीं रहा, ये खुद घुसते हैं आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं। लेकिन आप ये भी कमाल देखिए कि पार्लियामेंट में आपस में लड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में आपस में लड़ेंगी, यहाँ पे चाहे वो बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का हो, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हो, यहाँ सब इकट्ठे।
जी एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं
सर? जी नमस्कार सर।
नमस्कार,
मैं कुलवीर बाका बोल रहा हूँ, राजस्थान मनगढ़ से।
हाँ कुलवीर जी, राजस्थान से कार्यक्रम में स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए।
राय मैं रखना चाहता हूँ ललित मोदी के बारे में, मीडिया चैनल पर बहुत सारी बातें हुई, उनको भगोड़ा करार दे दिया गया, उन पर इल्जाम लगा दिए गए, RL या LR होता है वो भी चार्ज कर लिया गया था कि वो विदेश में उनको पकड़ लिए कि वो दूसरे इंटरपोल की मदद ली जा रही है। लेकिन अभी RCA को BCCI ने भी धमकी दी थी कि अगर बनाएंगे तो हम अब मैच नहीं करवाएंगे जयपुर में, और फिर भी RCA ने ललित मोदी को वापिस प्रेसिडेंट बना दिया। तो राजस्थान में पहले से भी जयपुर में कोई मैच देखने नहीं आ रहा है, हम लोगों की उत्साह में राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर जयपुर में मैच हो तो मैं भी देखने जाऊँ, मेरे परिवार वाले भी जाए। लेकिन पहले दो साल से भी मैच नहीं हो रहे, अगर वापस मना दिया ललित मोदी को तो जयपुर में मैच कहाँ से हुई और जयपुर राजस्थान के लोग कहाँ से खेलेंगे क्रिकेट?
जी जी
लेवल पर
जी प्रदीप जी, ये जो हमारे श्रोता कह रहे हैं और ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई फेरा का मामला है, और अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में ललित मोदी हर जगह छाए हुए थे, जब सुषमा स्वराज के साथ उनकी मतलब सुषमा स्वराज और ललित मोदी का प्रकरण छाया हुआ था, बात ये चल रही थी कि भाई वो तो फेरा के भगोड़े हैं, ये है वो है। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, भाई विदेश में रह रहे हैं, लंदन में रहते हैं और तमाम मामले हैं उन पर पैसे के लिए, और उसके बाद आप राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं, वो भी सहमति के आधार पर, जो आप सहमति खुद कह रहे थे।
देखिए ये बड़ा बहुत बड़ा अचंभा है कि कांग्रेस के दौर में ललित मोदी पे इल्ज़ाम लगे, वो बीजेपी जो उनकी राइवल है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो अब बने हैं उनके क्लोज थे, तो उसके बावजूद जो आरोप लगे ये यहाँ से गए, एब्सकॉन्डर करार दिए गए, कोई कुछ हुआ नहीं। अब जब बीजेपी सरकार में आई तो उन्होंने भी जब हल्ला हुआ अभी लेटली तो उन्होंने कहा कि हाँ हम तो अब पूरा रेड कॉर्नर अलर्ट, और कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उल्टा वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो सब जानते हैं एक सरकार की बैकिंग के साथ चलती है, बीच में हटाया गया, अब उनको फिर वापस लाया गया,
तो ये
क्या ये यही दिखाता है कि ये राजनीति इतनी हावी है कि एक तरीके से मुझे तो समझ नहीं आता कि पॉलिटिशियन या जो सरकारें हैं क्या उनको इतना भी इतनी भी शर्म नहीं है कि उनको इतना भी नहीं लगता कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उनको बैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो कोई वो अकाउंटेबल अपने आप को मानते नहीं है, दूसरा उनको लगता है कि या तो जनता बेवकूफ़ है या उनको बेवकूफ़ी रखा जाए या कि वो जनता,
लेकिन जनता से लेना देना क्या, जनता से मतलब ही नहीं है भाई, कौन सा उनको वोट मानना?
देखिए इलेक्शन, हाँ कौन सा वोट मानना है, 4 साल बाद इलेक्शन आएंगे, कोई मुद्दा और होगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हाँ।
और प्रदीप जी देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ललित मोदी लंदन में रहकर पिछले कुछ समय में तो ये भी ऐलान कर रहे थे कि वो IPL जैसी बड़ी लीग लाने वाले हैं जहां दुनिया भर के खिलाड़ी जुटेंगे, तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लंदन में रहकर भी उनकी ताकत शायद कम नहीं हुई है, क्योंकि कितने बड़े ख्वाब उन्होंने
उनकी देखे ताकत ऑब्वियसली कम नहीं हुई है, क्योंकि
ये,
तो जो
ये दिखा रहा है कि ताकत
बढ़ गई है, और सरकार इसी सरकार का एक फैक्शन है जो उनको बैक कर रहा है, नहीं तो वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दोबारा प्रेसिडेंट तो बन ही नहीं सकते।
वो सहमति के आधार पर,
वो भी सहमति के आधार पर।
कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर लेते हैं, जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
जी सर, हम रोशन कुमार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिहार से बोल रहे हैं सर।
रोशन कुमार जी आइए बताइए।
जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा सर, जो ये क्रिकेट में जो राजनीति का एंट्री हो रहा है सर, ये सर जो अभी ललित मोदी जो बना है इसमें ऐसी नई बात नहीं है कि राजनीति का मतलब जो उसमें एंट्री हो रहा है या कुछ, भ्रष्टाचार तो है ही सर, बट ये इनको जो बनाया गया है ये पूरी अच्छी छानबीन के साथ बनाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं कि राजनीति का एंट्री, अगर कोई स्वच्छ व्यक्ति अगर क्रिकेट में जाता है तो अच्छी बात है इसके लिए।
लेकिन ऐसा कोई स्वच्छ व्यक्ति का नाम पूछे जहन में आता है?
जी सर, इससे पिछले जो मतलब अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हुए थे जो BCCI का मतलब अध्यक्ष बनाए गए हुए थे वो भी अच्छे थे।
जी जी, सीतामढ़ी से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता को शामिल कर लेते हैं, जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
सर
जी नाम बताएं।
आत्मा चौहान एडवोकेट बस्ती जिले से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से।
जी आत्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए।
जी सर थैंक यू।
आप तो वकील हैं, आप तो वकील हैं,
तर्क रखिए। हाँ बिल्कुल तर्क रखेंगे सर। इसमें सर पैसा बहुत है, राज क्रिकेट में पैसा बहुत है, और क्रिकेट एसोसिएशन से जो ये जुड़े हुए राजनेता हैं इनको उससे स्वागत तो मिलती ही है, पैसा भी मिलता है इनको चुनाव लड़ने के लिए। काला धन जैसे ललित मोदी के बारे में चर्चा हुई ना, वो क्या नाम है उनका, वसुंधरा राजे जी से जुड़ा हुआ है प्रकरण, उनके साथ होटल में तमाम उनकी साझेदारी यहाँ है। तो हमको लगता है कि ये काला धन जो कमाते हैं वो फंडिंग करते हैं नेताओं को, जिससे ये चुनाव लड़ते हैं और विजयी होते हैं, और ये इनको प्रचार तो मिलता ही रहता है। ये वजह है सर, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी वजह है,
भ्रष्टाचार सबसे। जी
जी सर, क्रिकेट एसोसिएशन में सर इनको तो जाना ही नहीं चाहिए। जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं जैसे सुनील गावस्कर जी हैं, कपिल देव जी हैं, ये सारे लोग इस राजनीति में रहे तो समझ में आता है। हाँ। राजनेता क्यों जाते हैं
जी, इनको नहीं जाना चाहिए। आपने एक सवाल पूछा, आपने एक सवाल पूछा और बहुत तर्कपूर्ण बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए। प्रदीप जी, भाई सुनील गावस्कर अगर बनते हैं या फिर कोई भी खिलाड़ी दमदार आता है, कपिल देव आते हैं या कोई भी, मदन लाल, कोई भी नाम आप ले लें, भाई उन्होंने क्रिकेट खेली जीवन भर, बैट बल्ला खेला, कैच लुटाए, रन दिए, इनका तो समझ में आता है। जिन्होंने कभी मतलब आप बॉल फेंक दें तो कभी शायद कैच भी ना कर पाए।
तो यही जो हम बात इसी की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट्स को क्या मिलता है वहाँ। हाँ। तो वही साफ होता जा रहा है क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, क्लाउड बड़ा है, विजिबिलिटी बड़ी है, पेट्रनेज देते हैं।
हाँ।
तो
और प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई के खिलाफ तो बहुत चंद खिलाड़ी हैं जो खिलाफ बोल सके, क्योंकि आप देखिए कि जो खिलाड़ी एक से लेकर 100 टेस्ट मैच तक खेल चुके हैं उनको पेंशन मिलती है, यहाँ तक कि जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं उन्हें पेंशन मिलती है, आईपीएल से खिलाड़ियों को जोड़ा जा रहा है, अंपायर्स को भी अब पेंशन मिलती है। तो आप ये देखिए कि हर आदमी को पैसा देकर एक तरह से मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, फायदे से जोड़
देखिए, पैसा बोर्ड के पास आ रहा है, ये एक तो ये अच्छी चीज़ है कि वो पैसा प्लेयरों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जहां गड़बड़ होती है कि अगर कोई खिलाड़ी खिलाफ बोले, जैसे हाँ। पीछे कुछ खिलाड़ी खिलाफ बोले थे,
और कल
मरिंदर सिंह बोले थे, कपिल देव बोले थे, इनका पेंशन बंद कर दिया था।
कल कीर्ति आजाद बोलने वाले हैं,
नहीं इनका पेंशन बंद कर दिया था। तो आप एक तरीके से उनको थ्रेटन कर रहे हो कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आपको जो पैसा दे रहे हैं, हालांकि वो पैसा उनका, हम तो वो बड़ी गलत बात है। ये अच्छी बात है कि अगर आप इतनी कमाई कर रहे हैं तो जो क्रिकेट खेल चुके हैं देश के लिए या जो खेल रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन इसको एज अ ब्लैकमेल टूल यूज करना जो कि बोर्ड कर रही है, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है।
कल कीर्ति आजाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उन्होंने मतलब घोषणा की है कि उसमें बड़ी बड़ी बातें जेटली के खिलाफ, मतलब निश्चित तौर पर अगर जब वो बोलेंगे तो जेटली के अगेंस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
देखिए ये जो एलिगेशंस लगी हैं डीडीसीए में, जो कि अभी दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार ने एलिगेशन लगाई हैं, एक कुछ रिपोर्टें भी हैं कि जिसमें बहुत बड़े घोटालों की चर्चा की गई है। कीर्ति आज़ाद एज दिल्ली के क्रिकेटर, उन्होंने जब वो प्लेयर थे उसके बाद भी उन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं, और उनकी जेटली के साथ जब वो अध्यक्ष थे ये इसके बारे में काफ़ी टकराव हुए हैं कि क्यों ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है।
अभी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 15 मिनट पहले, बिशन सिंह बेदी का भी एक ट्वीट आया है।
एक बिशन सिंह बेदी का ट्वीट आया है, उन्होंने इंटरव्यू भी एक बड़ा जबरदस्त दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने तो जेटली जी को कई बार बार जाके बताया है कि देखिए ये गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक कीजिए, और वो उनकी सुनी अनसुनी कर देते थे। तो उनके एलिगेशन ये हैं कि जेटली जी की कनाइवन से उनको पता था क्या हो रहा है, उन्होंने जानबूझ के आंखें बंद कर ली। और कल कीर्ति जी यही मेरे ख्याल से सामने लाए,
कुछ और पुख्ता बातें उसमें
कह रहे हैं कि अभी मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे ख्याल से जेटली जी और बीजेपी की सरकार, आप ये देखिए क्रिकेट का क्लाउड कितना है कि ललित मोदी एक सरकार को कुछ महीने पहले सरकार हिल गई थी, और आज की तारीख में सरकार का प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर है, और सरकार पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है। उनका पार्टी का एक मेंबर ही कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जो लाइव जाएगी, वो सारी हिंदुस्तान की जनता देखेगी, इसकी ताकत देखिए कितनी है।
हाँ भाई, पहले जो है आपके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर अटैक हुआ, उसके बाद अब आपके देश के मंत्री अरुण जेटली पर अटैक हो रहा है। एक श्रोता को शामिल करते हैं जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी, हाँ
जी, मैं नंद किशोर सिंह बोल रहा हूँ, रामपट्टी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार से।
नंद किशोर जी, अपनी राय रखिए आप
जी। मेरा कहना है कि ये क्रिकेट का जो राजनीति होती है, तो इतना पैसा अगर खिलाड़ी को मिलता है तो फिर स्पॉट फिक्सिंग में काहे पकड़ा जाता है खिलाड़ी या तो अध्यक्ष बीसीसीआई का।
जी जी जी, बड़ी पते की बात तो कही नंद किशोर जी आपने।
ये मुझे लगता है कि जब से आईपीएल आया है ना, वो तभी से ऐसा हो रहा है।
नंद किशोर जी, जी ठीक है, नंद किशोर जी ने बड़ी पते की बात कही। प्रदीप जी, भाई इतना पैसा मिल रहा है तो उसके बावजूद जो है स्पॉट फिक्सिंग में और पैसा क्यों चाहिए?
देखिए, एक तो लालच
और मुझे लगता है ना कि इसकी कोई सीमा नहीं होती,
लालच की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि सारे क्रिकेटर्स पैसा नहीं इतना बनाते। जैसे आईपीएल में इतने कोई 80 खिलाड़ी हैं, उसमें से 30-40 डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं जिनका किसी ने नाम नहीं सुना, उनको भी लगता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक टेम्पटेशन अगर मिल गई, किसी ने पैसे दिखाए तो उनका तो समझ आता है कि अगर वो टेम्प्ट भी हो गए। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी टेम्प्ट होना तो आप यही कह सकते हैं कि लालच की कोई सीमा नहीं है।
नहीं, और वैसे भी आती हुई लक्ष्मी को मना कौन करता है।
और मोहनलाल जी, आप ये देखिए कि टीम के मालिक तक इसमें पकड़े गए हैं। अगर गुरुनाथ मैपन की बात की जाए तो ये बात ठीक है कि श्रीनिवासन साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो किसी लेन देन में फंसे हुए नहीं पाए गए। तो आप ये देखिए कि जब उनके परिवार से जुड़े लोग अपने आप को नहीं रोक सके तो खिलाड़ियों की क्या औकात है, वो क्या मालिकों के सामने बोल सकेंगे अगर कोई बात भी चल रही हो तो।
एक श्रोता हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप।
हाँ जी, मैं अब्दुलजीत भट्ट बोल रहा हूँ जी, जम्मू कश्मीर से, सुनकोट क्षेत्र से।
वाह वाह, क्या बात है जी, अपनी राय रखें आप।
सर ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण ये मसला है कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट को हम क्यों ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि जबकि क्रिकेट के बारे में हमें ये हम आपस में सियासत कर रहे हैं। बड़े अरसे के बाद ये हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और इनको गिराने के लिए हर आदमी कहीं ना कहीं कोई काम ढूंढता है, लेकिन क्रिकेट से ये चाइना, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी वो क्रिकेट नहीं खेलते, ये लोग वो क्रिकेट खेलते हैं जिनको कुछ आता नहीं है। तो हमें तो ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे देश के लिए हूँ, ऐसे हूँ। और क्रिकेट ने सारी गेमों को तबाह कर दिया है, तो मैं तो कहता हूँ क्रिकेट को हिंदुस्तान से बंद कर देना चाहिए और वो गेमें करनी चाहिए जो हमारे लिए गौरव की बात हो।
जी बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब थे कश्मीर से। ये एक अलग एंगल पे आ गए हैं कि क्रिकेट को ही बंद कर दो, क्योंकि इस क्रिकेट ने हमारे जितने देसी खेल थे उन सबको ख़त्म कर दिया। भाई हॉकी को ख़त्म किया, उसके बाद जो छोटे मोटे छोटे खो खो की तो बात ही आप छोड़ दें।
देखिए, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो जनता पे डिपेंडेंट है। अगर क्रिकेट तभी ख़त्म होगा जब इसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म होगी, अगर लोगों को लगता है कि इसने देश को नाश ही किया है, कोई तरक्की नहीं की है, तो देखना छोड़ दें।
लेकिन देखने मज़ा तो आता है,
एक क्रिकेट एक स्पोर्ट है, उसको इतना मतलब पॉलिटिकली और करप्शन वाइज उसके साथ उसको ख़राब किया जा रहा है। हालांकि अच्छा स्पोर्ट है, पॉपुलर है, अच्छी बात है, हिंदुस्तान अच्छा खेलता है, वो भी अच्छी बात है।
लेकिन प्रदीप जी, क्रिकेट को देखकर दूसरे खेलों में कम से कम कुछ जागृति आई है, उन्होंने कुछ पैसा लाने की कोशिश की। अब आप देखिए
कुश्ती को ले लीजिए,
कुश्ती है, बैडमिंटन है, हॉकी है, इनकी लीग शुरू हुई है, फुटबॉल की लीग शुरू हुई है, तो धीरे धीरे वहाँ भी पैसा आ रहा है और कहीं ना कहीं दूसरे खेल संघों तक ये बात गई है कि पदाधिकारी सीट पर बैठे रहते हैं, कुछ खिलाड़ियों को देते नहीं है, तो वो खेल कहाँ से तरक्की करेंगे।
मेरे पास एक फेसबुक की एक टिप्पणी है, मोहम्मद इरशाद हैं, आज वर्तमान समय में क्रिकेट संघ कोई दलदल नहीं है, इसे दलदल राजनीतिक दलों ने बनाया है, चूंकि पार्टियां क्रिकेट संघ को अपने पार्टी प्रचार और चंदा उगाही का सबसे बड़ा साधन मानती हैं, क्योंकि क्रिकेट संघ से बड़ी बड़ी कंपनी और टीवी चैनल जुड़े हुए हैं। ये हैं मोहम्मद इरशाद। इसी तरह का एक कमेंट है लखन भोजवानी का फेसबुक पर, क्रिकेट तो बहाना है, असली बात तो पैसा कमाना है। और इसी से मिलता जुलता एक विजय कुमार सिंह का कमेंट है कि जीवित भ्रष्टाचार रूपी सांप को पनाह देने के लिए केजरीवाल सांप की माला मोदी सरकार में डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरी लाइन ले रहे हैं। इन टिप्पणियों पर बाद में चर्चा करेंगे, एक श्रोता को शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
हाँ जी साहब, मैं चीतलाल चौहान करवाला की झोंपड़िया जिला बूंदी राजस्थान से बोल रहा हूँ।
अच्छा, राजस्थान से बोल रहे हैं जी। हाँ, राय रखें।
मैं यूँ कहना चाहता हूँ साहब, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब राज करने के लिए लोग हथकंडे अपनाते हैं तो ये तो खेल है, खेल के लिए तो हथकंडे अपनाएंगे आराम से, आश्चर्य की बात भी क्या है। और जब इसमें पैसा मिल रहा है, एसआरआर मिल रहा है, राजनेताओं को जब अपना सारा मतलब जो है एसआरआर करने के लिए, राजनीति करने के लिए सारा बेनिफिट मिलता है, तो मैं ये मानता हूँ कि राजनेता अपने या लोकतंत्र का गलत फायदा उठाने के लिए, जो लोकतंत्र चला है इसका गलत फायदा उठाने के लिए ये सब हथकंडे कर रहे हैं।
नहीं तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब हथकंडे अपनाने के लिए भी इसी तरह का काम क्रिकेट संघ भी कर रहा है।
हाँ, हथकंडे अपनाने के लिए, अपना वो उल्लू सीधा करने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, अपन को किसी तरह से सुविधा मिले, जैसे गाड़ी ऐसा आराम, पैसा चंदा कुछ मिले, राजनीति में सब कुछ ये लोकतंत्र ने कर रखा है सब।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सीधे कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर लेते हैं, नाम बताएं।
जी मैं बिहार के बांका जिला बेलहर प्रखंड राजपुर गांव से भूषण बोल रहा हूँ।
हाँ भूषण जी, राजपुर गांव से। जी
मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रिकेट में जो है ना लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति करने से उसमें पैसा जो है ना, पैसा कमाई का जरिया जो है इसलिए होता है, और मेरे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट को खेल भावना से लेके इसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दे के करना चाहिए।
जी क्रिकेट की तरह ही देखें, खेल को खेल ही रहने दें, पेशा ना बनाएं।
लेकिन अब सवाल तो ये है कि क्रिकेट क्रिकेट रहा नहीं है तो बिजनेस बन गया, क्योंकि अब ये बिजनेस बन गया है, इसको हर एक बिजनेस के तरीके से देख रहा है, चाहे वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, सबको प्रॉफिट चाहिए। एक खिलाड़ी अगर 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ बनाता है तो लोग कहते हैं कमाल होगी, ये नहीं सोचते हैं कि एक 25 साल का खिलाड़ी अगर 1 करोड़ से 50 लाख ही कमा ले, वो भी बहुत कमाल।
नीलामी हो रही है, एक नीलामी हो रही है,
जब अगर आप बाजार में अब नीलामी कर रहे हैं तो नीलामी यही नतीजे निकलते हैं।
एक श्रोता को शामिल कर लेते हैं। जी हाँ आदेश, कुछ कह रहे थे आप।
जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों की बात करें तो उन्हें भी वहाँ काफ़ी पैसे मिलते हैं, और जो वहाँ चमक जाते हैं तो फिर बड़ी टीमों में खेलने का मौका मिलता है। और अब आप ये देखिए, खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रायोजक मिलते हैं, करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं,
हर चीज में प्रायोजक है, बैट पे बिल्ला लगाओगे उसके पैसे, हाथ में घड़ी पहनोगे उसके पैसे, बेल्ट पहनोगे उसके पैसे, हर चीज के पैसे। एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं, समय कम है। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
जी मैं पश्चिम बंगाल मालदा जिला मोहम्मद आलमगीर बोल रहा हूँ।
मोहम्मद आलम साहब, बहुत संक्षेप में अपनी राय रखिए।
जी मेरा राय यह है सर कि क्रिकेट में पैसा भी, पैसा बहुत है सर, इसलिए पैसा को मतलब राजनेता राजनीति तो कर नहीं सकता पैसे के बगैर, इसलिए उसको क्रिकेट में झाप नहीं होता है, वो पूरे दल को वही चलाता है, एक नेता अगर चला जाता है क्रिकेट में तो सारे नेता मतलब पूरा पार्टी का उसी में बैलेंस निकल जाता है पार्टी को चलाने के लिए,
पार्टी को चलाने के लिए पैसा निकल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पश्चिम बंगाल से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ प्रदीप जी, आदेश जी, कुल मिलाकर मतलब सारा जो गड़बड़ है, ये जो दलदल बना है वो पैसे की दलदल है,
पैसे की दलदल है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि पिछले कुछ जो 6 महीने में जो सामने आया है और जो अब हो रहा है, शायद पॉलिटिशियन इससे ये अगर सबक ले लें कि इससे खतरा अब उनको भी हो रहा है, पहले तो ये चीज़ें बाहर निकल नहीं रही थी, अब सरकारें हिल रही हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हिल रहे हैं, तो शायद कोई आगे बाकी पॉलिटिशियन सोचे कि हम ना घुसे तो अच्छा।
लेकिन मजेदार चीज़ क्या है कि दुनिया का हर क्रिकेट संघ हिंदुस्तान के BCCI के साथ जो है जो गठजोड़ करके मैच खेलना चाहता है इंडिया के साथ,
क्योंकि वो पैसा बनाना चाहते हैं।
जी हाँ देखिए, जब IPL शुरू हुआ था दुनिया भर के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर IPL से जुड़ गए, कोई कोच बना, कोई खिलाड़ी है, और अब तो सीधी सी बात है, ऐसे पैसे वैसे पैसे, पैसे बिना हिले कैसे।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप मैगजीन, उन तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जो हमारे कार्यक्रम में शामिल हो गए, और उनसे माफ़ी जो जिन्हें हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बिना शर्त जमानत दे दी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक कार में हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं। कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की के दक्षिण पूर्व में एक बड़े सैन्य अभियान का ब्यौरा अब तुर्की की सरकार जारी कर रही है। रूस और अमरीका की सरकार ने सीरिया में अगले 6 महीनों में एकीकृत सरकार स्थापित करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। इराक के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के एक हवाई हमले में गलती से इराकी सेना के 9 जवान मारे गए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की इस तीसरी सभा BBC इंडिया बोल में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात आपसे घटना चक्र में होनी तय है। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष, मोहनलाल शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। नमस्कार।